بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکی صدر باراک اوباما کا دوسرا عہد صدارت، ان کی راہ میں حائل مشکلات، چیلنجز اور پریشانیاں۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے ملاحظہ کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا دوسرا دور صدارت شروع ہو گیا ہے۔ عہدے کا حلف لینے کے بعد پیر کے روز باراک اوباما نے اپنی افتتاحیہ تقریر میں امریکی عوام سے ملک کو درپیش گوناگو مسائل و مشکلات کے حل کے لیے آپس میں متحد ہو جانے کی اپیل کی، جس کے بعد پیر کے روز انہوں نے عوام کے سامنے حلف لیا۔ اوباما نے دوسرے دور صدارت کی شروعات کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے پر خاص توجہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پرامن دنیا کی تعمیر کے راستے تلاش کرنے کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اوباما نے کہا کہ ہم دیگر اقوام کے ساتھ اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرے گا۔ باراک اوباما نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو قومیں اور حکومتیں یہ تقریب حلف برداری دیکھ رہی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یقین جانیے کہ امریکہ ہر اس قوم، مرد و زن اور بچے کی حکومت ہے جو وقار اور امن و سلامتی سے آراستہ مستقبل کے لیے کوشاں ہے۔ اوباما نے کینیا کے شہروں اور دیہاتوں کے عوام کو بھی مخاطب کیا جہاں ان کے والد کی پیدائش ہوئی تھی۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر قیادت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ عالمی قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش ہی گزشتہ 7 عشروں کے دوران عالمی سطح پر امریکہ کی تسلط پسندی کی بنیاد رہی ہے۔ اسی خواہش نے سر جنگ بھی شروع کروائی۔ اس دور میں امریکہ اور اس کے حریف نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں فوجی اور سیاسی مداخلت کر کے ان کے مستقبل کو اپنے اہداف کے مطابق ڈھال لیا۔ سرد جنگ کا زمانہ تو ختم ہو گیا، لیکن اوباما کے جملے سے صاف ظاہر ہے کہ واشنگٹن کی تسلط پسندی کی خواہش اور عزائم اب بھی کروٹیں لے رہے ہیں۔ لیکن اوباما کے دوسرے دور صدارت میں امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ واشنگٹن کی اس خواہش سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اوباما نے کہا کہ ان کے ملک میں بہت سے غلط فیصلے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں ملت امریکہ نئے عہد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اوباما نے اپنی تقریر میں جن سنجیدہ مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کے پیش نظر عالمی قیادت کے امریکہ کے خواب کی تکمیل تقریباً ناممکن نظر آتی ہے۔ اوباما نے کہا ہے کہ امریکی عوام میں یہ اندیشہ پایا جاتا ہے کہ ان کے ملک کا سقوط یقینی ہے۔ اوباما کے پہلے دور صدارت کے دوران یہ ذہنیت بہت زیادہ عام ہو گئی۔ اوباما نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنے کے بجائے ملک کو شمالی افریقہ کے ملک لیبیا میں ایک نئی جنگ میں الجھا دیا۔ اوباما نے 25 لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا جو پورا نہیں ہوا۔ اوپر سے امریکہ کے خاص سیاستدانوں کے نظریات عوام میں مزید بے چینی پھیلا رہے ہیں۔ حکومت سے ریپبلکن پارٹی کا ٹکراؤ نمایاں طور پر نظر آتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی قرضے کی لاینحل مشکل کو حل کرنے کی کوششیں دونوں پارٹیوں کی رقابت کی نظر ہو کر رہ گئیں۔ اب ان حالات میں جب امریکی حکومت کو نہ تو بھرپور عوامی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی اس کی معیشت پٹری پر ہے، اوباما نے عالمی قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے امریکہ کی آمادگی کی بات کہی ہے، جو بڑی مزہ کا خیز معلوم ہوتی ہے۔
جی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 نومبر میں جب اس سے پہلے الیکشن ہوا تھا اور جب پہلی بار باراک اوباما برسر اقتدار آئے تھے، وائٹ ہاؤس میں پہنچے تھے، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں بے شمار وعدے کیے تھے، لیکن 4 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جب ان کی کارکردگی پر نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی سطح پر نظر ڈالی گئی، تو ایک ایک کر کے سارے وعدے صفر ہی رہے اور کسی بھی وعدے کی نہ تو تکمیل ہوئی نہ پاسداری، خواہ وہ داخلی سطح کے رہے ہوں یا خارجی سطح کے۔ اور اب پیر کو جو انہوں نے رسمی طور پر جو حلف برداری کی تقریب تھی اور اس سے جو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے پھر ایک بار اپنے ایک طویل وعدوں کی فہرست گنوائی ہے، لیکن ساتھ ہی مایوسی کا بھی اظہار تھا اور اپنے پیش رووں کی ناکامی کا بھی اعتراف تھا، اور اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ امریکہ ان دنوں سخت معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے اپنی تقریر میں اعتراف کیا کہ امریکی عوام के जहन में ये बात घर कर चुकी है कि अमरीकी साख अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और उसे कोई बचा नहीं सकता। जब अमरीकी आवाम के जहनों में ये बात घर कर चुकी हो कि अमरीकी साख तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और उसे अब कोई नहीं बचा सकता, तो ऐसे में बाराक ओबामा का ये कहना कि हम आलमी क़यादत के लिए तैयार हैं कितना वज़न रखता है। इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। इस वक्त चलते हैं सीधे इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं सरकर्दा और सीनियर तर्जे निगार जनाब उमर रियाज अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
उमर रियाज अब्बासी साहब, आपने ओबामा साहब की तकरीरों की जो ख़ास ख़ास बातें अभी हमारे प्रोग्राम में भी सुनी और यकीनन आपने उनकी तकरीर पर गहरी नज़र रखी होगी, एक तवील फहरिस्त है उनके वादों की, किन किन वादों की बात की जाए, लेकिन कभी गालिब ने कहा था कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। गालिब को तो ये उम्मीद थी बेवफाओं से, लेकिन ओबामा ने जो ये कहा है कि हम पुरअमन दुनिया देखना चाहते हैं, पुरअमन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, वो ओबामा जिनकी मौजूदगी में इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, शाम और दुनिया के नमालूम कितने ममालिक जंग की आग के शोले में भड़क रहे हैं, वो अगर ये कहें कि हम एक पुरअमन मुस्तकबिल चाहते हैं और दुनिया को पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसको हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो क्या ओबामा से ये उम्मीद की जा सकती है? वो ओबामा जो अपने हर जुमले में लफ्ज़ उम्मीद का इस्तेमाल करते हैं।
बहुत खूबसूरत सवाल है और आपने तमहीद में बराक ओबामा की जो वीडियो दिखाई और उसके अलावा मैं उनकी तकरीर भी बड़ी बारीक बेनी से देख रहा था। वो कहते हैं ना कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तो ओबामा साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखने से पहले इंटरनेशनल रिलेशंस का एक तालिब इल्म ये बात बखूबी जानता है कि अमेरिका के अंदर चेहरे जो हैं वो बदलते हैं लेकिन निज़ाम नहीं बदलता। अगर बाराक ओबामा हों या इनकी जगह कोई और हों, उनकी जो पॉलिसी है वो स्ट्रेंथन रहती है और प्रोलोंग करती है, उसका रिवाइवल बहुत कम होता है। आपने हिस्ट्री के अंदर देखा कि सीनियर बुश से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक और फिर बाराक ओबामा तक उनकी पॉलिसी का सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है, वो एजेंडा ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अपना कॉलोनियलिज्म है उसको और यूनिपोलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और अपने मफादात के तहफ्फुज की तकमील के लिए चाहे जितना भी इंतहाई इकदाम करना पड़ जाए वो करना है। यही वजह है कि जो फहरिस्त उन्होंने गिनवाई है अपने जितने भी जो उनके तहफ्फुजात हैं उनकी, उनमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका को दाखिली तौर पर कुछ चैलेंजेस का सामना है और दूसरा खारजी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे। मैं सबसे पहले दाखिली सतह पे आता हूँ। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट के अंदर बेदारी शऊर की जो लहर है वो इंसान के फिक्र, शऊर और जहन से टकराने के बाद उनके अमल में झलकना शुरू हो गई है। मेरे जुमले पे अगर आप गौर करें तो एक शऊर होता है जो इंसान के इदराक और उसके विजदान में आता है, उस पर वो सोचता है। तो जब सोच अमल का रूप धार ले और इंसान उस प्रैक्टिकलिटी की तरफ चले जाएं, तो ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे खौफनाक दाखली चैलेंज होता है। इस वक्त अमेरिका की शाहराहों पे, चौराहों पे, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, कैलिफोर्निया हो, चाहे वो दीगर रियासतें हों, वस्ती रियासतें या मशरकी रियासतें, उनके अंदर अमलन ये बहस शुरू हो गई है। कैसीनो क्लब के ऊपर लोग बातें करना शुरू हो गए। मैंने देखा नौजवान बातें कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या बनेगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो वो सिंक डाउन कर रही है बहरुल ओकियानूस के अंदर, ये अक्सर लोगों का भी तज्जिया है। और दूसरी बात उनकी हेल्थ रिफॉर्म्स की है, वहाँ पे आपको पता है नौजवान बहुत काम में, एजड लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जब एजड हैं तो उनको मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। और इस वक्त अमेरिका के अंदर क्राइम रेट, मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया का एक तिहाई क्राइम रेट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। कल की मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, जो एंड पे उन्होंने शाया की, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र था करप्शन के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। तो यूनाइटेड स्टेट के हवाले से बड़ी एक अजीब सी बात मुझे लगी कि 2012 में सबसे ज़्यादा क्राइम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुए। अब वो क्राइम किस तरह के हैं, वो मोबाइल छीनने की वारदातें हैं, वो लोगों से खाना छीनने की, बर्गर छीन लेने की, मतलब जिस मुल्क के अंदर जब डोमेस्टिकली आपकी इकोनॉमी इस हद तक जो है वो डीरेल हो जाए और इस हद तक डिमोलिश हो जाए, तो आपको पूरी दुनिया पे हुकूमत करने की बातें मजहका खेज लगती हैं। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। तो मेरे ख्याल में बराक ओबामा अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, वो दूसरों के गिरेबान को दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोमेस्टिकली इकोनॉमी हो या हेल्थ हो या उनका क्राइम रेट हो, ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर आपको याद होगा मैं तसलसल से कहता रहा हूँ कि बेल आउट पैकेज अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर को ले डूबेगा। आज ये पोजीशन है कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने चाइना का कर्जा देना है, अमेरिका ने फ्रांस का कर्जा देना है, दीगर मुल्कों का कर्जा देना है। अब वो ये एक घिनौना खेल खेल रहा है कि अपना असला भेजने के लिए सऊदी अरब को इन्वॉल्व कर लिया है उसने, और बाज़ जो अरब रियासतें हैं उनको इन्वॉल्व करके उनको ये कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान और ये दूसरी रियासतें आपके लिए खतरा हैं। तो तालिबान का और दूसरे लोगों का नाम दे के, ईरान का नाम दे के अपना बारूद बेच रहा है। तो अब अमेरिका की इकोनॉमी बारूद के फैलाव पर चल रही है और वो दरूद और सलाम पढ़ने वालों को बारूद की बू से मिटाना चाहता है। ये उसका सबसे बड़ा जो है वो फेलियर है। मैं समझता हूँ कि अब आले सऊद को भी समझ लेना चाहिए कि जो उनके ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका और स्विस बैंकों में हैं वो भी मुंजमद हो जाएंगे जैसे कदाफी के मुंजमद हुए थे। तो खैर की कोई खबर नहीं है मुझे बराक ओबामा के नए दौर से। जो चेंज का नारा लेके आए थे उस चेंज ने बारूद फैलाया, लाशें गिरा दी, खाना जंगियां करवा दी मुल्कों के अंदर। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि जितना अमेरिका आगे गया है उतना ही बेदारी शऊर डट के सामने आया है, और अब पाकिस्तान के गली कोंचों के अंदर भी जो अमेरिका के आलाकार और पपेट्स हैं उनके खिलाफ उनके गिरेबानों में हाथ डालने के लिए आम आदमी शाहराए दस्तूर पर और जिना एवेन्यू तक पहुंच गया है। तो क्रेडिट गोज टू ईरानियन लीडरशिप जिन्होंने नॉन अलाय मूवमेंट के जरिए लीड किया, अमन की बात की और बेदारी शऊर की तहरीक को मिडल ईस्ट से निकालकर बरे सगीर तक ले आए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना अमेरिकन ड्रोन्स के जरिए और अपनी वहशत के जरिए आग उगलता जाएगा उतना पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी बेदारी शऊर की लहर फैलेगी। तो अमेरिका का मुस्तकबिल मुझे बड़ा तारीख और बड़ा समंदर बुर्द होने वाला लगता है, और ओबामा के दौर में ही शायद अमेरिका की रियासतें जो हैं वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएं।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। चलते हैं इस वक्त सीधे बम्बई जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हिंदुस्तान के सरकर्दा और बुजुर्ग तज़ निगार जनाब हसन कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
हसन कमाल साहब, बराक ओबामा ने अपनी तकरीर में जो पीर की सुबह की उसमें एक तवील फहरिस्त वादों की गिनाई है, और आपको याद होगा कि उन्होंने तब्दीली का नारा ही देकर व्हाइट हाउस पर कब्जा किया था नवंबर 2008 में, या यूं कहा जाए कि जनवरी 2009 में। तो अब जबकि उनका ये 4 साल का दौर गुजर चुका है और उन्होंने जो तब्दीली का नारा दिया था एक भी नारा जो है जामे अमल ना पहन सका, अब उन्होंने फिर जो एक तवील फहरिस्त गिनाई अपने वादों की, आप कितने पुर उम्मीद हैं कि वो इनमें से कुछ भी वादे पूरे कर सकेंगे?
ये इस बार ये एक आम ख्याल था कि चूंकि किसी भी अमेरिकी सदर का दूसरा दौर जो है वो सदारत का आखिरी दौर होता है, इसलिए वो पहले दौर के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा बेखौफ, निडर और फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। लेकिन अमरीकी मीशत इस वक्त जिस आलम में गिरफ्तार है उसकी वजह से ये नजर नहीं आता कि वो कोई बहुत अहम फैसले कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि हम अब दुनिया में अपने दोस्तों की तादाद ज्यादा करना चाहते, लेकिन उन्होंने जो नहीं बताया कि वो ये कैसे करेंगे। उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि दुनिया में उनके जितने दुश्मन पैदा हुए हैं उनकी बड़ी तादाद सिर्फ इस वजह से पैदा हुई है कि उन्होंने इसराइल से अंधी दोस्ती कर रखी, और इस अंधी दोस्ती की वजह से सारे एशिया में, अफ्रीका के बड़े हिस्से में उनके खिलाफ तलखीन और नफरत फैली हुई थी, और ये बहुत मुश्किल है कि वो इस अंधी दोस्ती से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने एक दिलचस्प बात ये भी कही कि दुनिया के मामलात में अमेरिका को दखील होने के लिए ये जरूरी है कि अमेरिका के बारे में जो शकूक व शुबहात हैं और लोगों में खौफ पाया जाता है उसे दूर किया जाए। फिर जहां पर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैसे किया जाएगा। मईशत इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है कि उसको अब उसकी तरफ से ध्यान बटाने के लिए, पहले तो जंग एक हरबा था, अब जंग भी कोई हरबा नहीं रही
जी।
इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका दूसरा दौर जो है वो पहले दौर के मुकाबले में कुछ बहुत ज्यादा खुशगवार साबित हो सकता
जी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं सीधे लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर कैसर इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
कैसर इमाम साहब, अभी आप हसन कमाल साहब की गुफ्तगू यकीनन सुन रहे होंगे। वो फरमा रहे थे बराक ओबामा के कौल से कि हम अपने दोस्तों की तादाद में पूरी दुनिया में इजाफा करेंगे, और उनका एक जुमला ये भी था कि हम कोशिश करेंगे कि दुश्मनों को भी दोस्त बनाएं। वो अमेरिका जो अब तक जिसकी तारीख ये रही हो कि दोस्त को दुश्मन बनाता रहा है, वो अब दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाएगा?
ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं समझता हूँ कि आज अगर आप किसी भी शख्स को जिसकी उम्र 20 साल के करीब हो उससे ये पूछें कि क्या उसने ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा दिन देखा है जब दुनिया में कोई जंग नहीं हो रही थी और उस जंग में अमेरिका मुलव्वस नहीं था, मेरा ख्याल है कि उसका जवाब यकीनन नफी में होगा। फिर आप गुज़रा गौर करें, कल जिस जब ये हल्फ उठा रहे थे ओबामा साहब, उसी रोज़ मार्टिन लूथर किंग का यौम पैदाइश भी था, मुल्क में तातील थी। मार्टिन लूथर किंग ने अपने कत्ल होने से एक साल कबल ये कहा था कि दुनिया में तीन बुराइयां ऐसी हैं जिनका जिम्मेदार अमेरिका है, और वो तीनों बुराइयां सबसे ज़्यादा दुनिया को मुश्किलात में मुब्तला कर रही हैं। इनमें सबसे बड़ी चीज़ नस्ली मुनाफरत यानी रेसिज्म थी, दूसरी मटेरियलिज्म थी, और तीसरी मिलिट्रीज्म थी यानी अस्करियत। मैं समझता हूँ कि ये तीनों बुराइयाँ इन चार सालों में और ज़्यादा बढ़ी हैं, दुनिया भर में ये इनमें इजाफा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जिस डगर पर अमेरिका जा रहा है आइंदा चार सालों में भी ये बुराइयाँ दुनिया में बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसमें दोस्त बनाने के मौके तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक दफ़ा जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि दहशतगर्दी सो कॉल्ड दहशतगर्दी, इसके खिलाफ हमारी जंग साल हर साल जारी रहेगी, और अभी तीन दिन पहले कैमरॉन ने ये कहा है कि माली में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग शायद कई दहाइयाँ तक रहेगी। सो ये बातें जो हैं ये दुनिया में जंग की, वो ये जाहिर करती हैं कि शायद दोस्त बनाने का वक्त इन लोगों के लिए गुजर चुका है। अब तो ये जगह जगह दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन तलाश कर रहे हैं। अभी अलजजायर और माली में नए दुश्मनों की तलाश शुरू हो चुकी है, वहाँ फ्रांस पहले से ये काम कर रहा है, बरतानिया उसमें मुदाखलत कर रहा है, अमरीका जाहिर है कि उससे बाहर नहीं रहेगा। फिर आप ज़रा ओबामा की तकरीर पर गौर करें, उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है मुसावात पर और इत्तेहाद पर, लेकिन ये मुसावात और ये इत्तेहाद सिर्फ अमरीकियों के लिए है, दुनिया में इत्तेहाद के लिए, दुनिया के दूसरे लोगों के लिए, किसी तरह की मुसावात के लिए कुछ नहीं कहा गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सब कुछ जो है ये दुश्मन तलाश करने के लिए तो किया जा रहा है, दोस्तों की ना उनको तलाश है, शायद उनको अब ज़रूरत भी नहीं रही है
जी। बहुत शुक्रिया। उमर रियाज अब्बासी साहब, बराक ओबामा ने कहा कि दुनिया में जहाँ जहाँ लोग, खा वो बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, मर्द हों, औरत हों, जो जो भी मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो अमरीकी हुकूमत को अपनी हुकूमत समझें। क्या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए या ये माना जाए कि उन्होंने ये कहना चाहा कि मैं पूरी दुनिया के अक़वाम का सदर हूँ?
देखिए, आपने दुरुस्त कह दिया, जवाब आधा आपने खुद दे दिया। मैं ये समझता हूँ हम कैसी अपनी हुकूमत समझें। ये अपनी हुकूमत तो तब होती है जो अपने लोगों के मफादात की बात करे। पूरी दुनिया में भी जहाँ जमहूरियत का दरख्त फलता फूलता है, अमेरिका उस जमहूरियत को डीरेल करने की बात करता है। इसलिए कि जो बात डिक्टेटर से मनवाई जा सकती है वो पूरी डेमोक्रेटिक सेटअप से नहीं मनवाई जाती। पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, जितने भी डिक्टेटर्स के अदवार गुजरे अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें मनवाई हैं। अब डेमोक्रेसी के अंदर जब वो ड्रोन अटैक्स करते हैं तो यहाँ की पार्लियामेंट उसके खिलाफ करारदाद दे मुजम्मत मंजूर करती है, लेकिन उसकी स्याही खुश्क होने से पहले वो उसको वायलेट करते हैं। तो अमेरिका तो पूरी दुनिया में जमहूर के खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इन्होंने लोगों से फॉर अवे कर दिया है, ऑफ द पीपल कर दिया है कि शट अप, लोग इससे दूर रहें। मैं ये अर्ज कर दूं कि अमेरिका किस मुंह से ये कहता है कि उसे अपना सदर समझें पूरी दुनिया वाले और अपनी हुकूमत समझें, जो लोगों में बारूद तकसीम करता हो, जो लोगों के मफादात का ख्याल न रखता हो, और जो वहाँ के पुरामन शहरियों पर बमबारी करता हो, और वहाँ के गजाई अजनास को ये अफ्रीका में पूरा नहीं कर सके, तो पूरी दुनिया में हक हुक्मरानी कैसे कायम करते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर ये थानेदार हैं पूरी दुनिया के, तो इरिटेरिया में, सोमालिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त जो गजाई बहरान है, यूएनओ की कई रेजोल्यूशन है, रेड क्रॉस के कई बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए हैं, उन्होंने इमदाद की अपील की है। तो ये जो अमरीका बारूद बेच रहा है, इसके वज कुछ तो वहाँ के लोगों का ख्याल करे। अगर इन्हें इंसानियत का ख्याल हो तो सबसे पहले इनके मिशन अफ्रीका में मौजूद होते। ये इंसानियत दोस्त नहीं है, ये इंसानियत कुश हैं। और इंसानों को मारना, पुरमन लोगों को मारना जो अपनी जमहूरियत की, इंसानी हकूक की बात करते हैं, जो इजहार राय की बात करते हैं, उन पर अपने बारूद के जरिए अपने मफादात की तकमील के लिए अपने आयनी हाथों से निपटना, यह अमेरिका का मकसद अवलीन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, जो फलस्तीन के साथ होने वाला है, जो इनका ग्रेटर गेम है, जो करने जा रहे हैं, अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, ये चाह रहे हैं कि उसको पार्टीशन में तकसीम कर दिया जाए और एक ऐसी बाउंड्री तश्कील दे दी जाए कि जो फलस्तीनी हुकूमत होने के बावजूद भी उसकी अथॉरिटी ना हो। तो इसराइली इनके थिंक टैंक्स हैं, पहले 7 लोग थे, अभी समझाए 11 बन गए, 4 इसराइली, उसमें यहूदी लॉबी, सहूनी लॉबी के और एजेंट्स आ गए, जो इस वक्त अमेरिकन पैसिफिक स्टडी सेंटर के 2 इंचार्ज हैं, वो इंचार्ज मोसैद के ट्रेन करदा, वो उसके एसएसजी कमांडोज हैं। एक कमांडो का नाम डॉक्टर विलन या इस समथिंग, में रात को पढ़ रहा था, वो मोसाद के अंदर उसने ट्रेनिंग की है और वो कई फलस्तीनी मुसलमानों का कातिल है। वो अब अमेरिकन एनालिटिक थिंक टैंक का सरबराह है और वहाँ पे वो बैठा हुआ रिसर्च विंग में बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं, एक कमांडो का रिसर्च विंग में क्या काम है? वो सारी रिपोर्टें ईरान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से एनालाइज करेगा और खुफिया मिशन भेजेगा कि फलां बंदे को कैसे उठाना है और किसको कैसे मारना है और सेक्टेरियन वायलेंस कैसे पैदा करना है। तो ये इनके आलाकार बड़ी ग्रेटर ग्रैम के अंदर इन्वॉल्व हैं। बराक ओबामा एक कठपुतली है, असल में इसके पीछे इजरायली गवर्नमेंट है, उनके थिंक टैंक्स हैं। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ और आप अपने पिछले टॉक शोज उठा के देखें कि इनकी रस्सी और इनकी डोर जो है, इनकी लगाम जो है, वो तल अबीब से चलती है, यरूशलम से चलती है। तो जब इनकी घंटी वहाँ से बजती है तो इनके कान खड़े हो जाते हैं कि किसकी हुकूमत को गिराना है, किसको बनाना है, किसको दहशतगर्द कहना है, कहाँ पर जो है वो शाम के अंदर गवर्नमेंट को डीरेल करना है और वहाँ पर बमबारी करवानी है, बहरीन में कितने फौजी भेजने। तो इनकी एक कॉल पे आले सऊद के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो दुम दबा के लोमड़ी की तरह यह सर कर लेते हैं, इसलिए कि उनके डॉलर्स भी वहां पे पड़े हुए हैं। उन्हें शराब चाहिए, उन्हें औरतें चाहिए, उन्हें हरमैन शरीफेन का तकद्दस तो नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में जब मदारिस को फंडिंग करनी हो, अलकायदा को करनी हो, तो यहां भी सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व किया जाता है। बहरीन के मुसलमानों को मारना हो तो वहां भी सऊदी फोर्सेज जाती हैं। तो अमेरिका मुसलमानों के जरिए, जिन मुसलमानों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, उनके जरिए कहीं पर दहशतगर्दों की हिमायत करता है और बाद जगहों पर मासूम आवाम पर बमबारी करता है। तो यह दोहरी मुनाफकत बराक हुसैन ओबामा की है, यह इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगा। लेकिन आई शुड से कि अब दुनिया को शऊर आ गया है, आप लोगों ने, मीडिया ने और ईरान ने जिस तरह लीडिंग रोल प्ले किया है, हर शख्स को, मैंने आपको कहा था ना एक साल पहले कि पाकिस्तान की शाहराओं पर भी और यहां भी डिस्कशन हो रही है कि इस मुल्क को भी कोई खमीनी चाहिए, बेदारी शऊर की बात हो रही है। तो आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कि पाकिस्तान के हुकामे बाला भी रोड पर आए और उन्होंने आवाम की बात सुनी। तो वो पपिट्स जो अमेरिका के इशारों पर नाचते थे, बेदारी शऊर की तहरीक ने आवाम को इतना ताकतवर बना दिया है कि वह अपने ऐवानों से उठकर अब प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ के आवाम के साथ मुदाकरात करते हैं। तो यह शऊर इंशाल्लाह बेदार होगा और मेरे ख्याल में आने वाला इरा विद इन 10 और 15 ईयर्स आने वाले जो 5, 10, 15 साल हैं ये बड़े वाइटल होंगे, मशरक़ वस्ता के हवाले से भी, बड़े सगीर के हवाले से भी, इसलिए कि अमेरिका अब भीगी बिल्ली बन के यहाँ अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो चाह रहा था कि पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर्स आ जाए जिसका जिससे बात मनवा के मैं सेफ पैसेज ले सकूं। अब उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, अब वो फंस गया है बुरी तरह, अफगानिस्तान के अंदर उसका कब्रिस्तान बन चुका है। तो अब वो चाह रहा है कि यहाँ से मैं निकल के कोई और नया महाज खड़ा करूँ। तो अब अमेरिका की कोई पॉलिसी उस तरह से वाजे भी नहीं है, चूँकि रातों रात इनकी पॉलिसीज बदलती हैं, इनका निशाना बदलता है ऐसे चमगादड़ की तरह कि जो दिन में कुछ और देखता है रात को कुछ और सोचता है।
बहुत शुक्रिया आपका।
मेरे ख्याल में अपने थिंक टैंक्स को मजबूत करना चाहिए, पाक ईरान तुर्की अफगानिस्तान इनको मिलके एक ऐसा स्कॉलर्स का पैनल बनाना चाहिए जो पास्ट की हिस्ट्री को मद्देनजर रखें और मुस्तकबिल की, और इनकाउंटर कर सकें मोसाद का और CIA का, तब जाके हमारी लीडरशिप जो है वो इस काबिल होगी कि इनसे आंखों में आंखें डाल के बात करें, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हमारे मुल्कों का, मुसलमान मुल्कों का बढ़े ताकि इस नासूर से हमारी और हमारी नस्लों की जान छूट सके।
बहुत शुक्रिया। हसन कमाल साहब, आपको याद होगा कि जब गुज़िश्ता बार ये पहली बार जब सदर मुंतखब हुए थे बाराक ओबामा, तो वाइट हाउस में पहुंचने के अगले ही दिन उन्होंने फरमान जारी किया था, हुक्म दिया था, न सिर्फ ये कि वादा किया और हुक्म दिया था, फरमान जारी किया था कि 21 जनवरी 2010 को ग्वांतानामो जेल बंद कर दी जाएगी। 21 जनवरी 2010 को गुजरे हुए अरसा गुजर चुका है, तो जब एक इतना छोटा सा अपना फरमान न मनवा सके, उस पर अमल न कर सके, तो अब जो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से 2014 के आखिर तक हम अपनी फौजें वापस बुला लेंगे, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसा कर सकेंगे या कर पाएंगे?
और करना चाहेंगे भी नहीं, और ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी सूरत में कुछ न कुछ फौज वहां मौजूद रहे, लेकिन बदकिस्मत उनकी बदकिस्मती से हालात वहाँ ऐसे हैं कि वहाँ एक एक पहरना एक एक दिन बहुत भारी हो रहा है। एक तो अखराजात इतने लंबे चौड़े हैं कि अमेरिका की चरमराई हुई जो मीशत है वो उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दूसरे वहाँ इस कदर सख्त पिटाई हुई है हर महाज पर और हो रही है, और वहां पर उनकी जितनी भी जंगी शातिराना चालें थी वो बुरी तरह नाकाम हुई है। तो अगर वो वापसी का इरादा कर लेते हैं तो उसकी वजह उनकी खुलूस नीयत नहीं होगी, बल्कि ये मजबूरी होगी कि शायद अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की फौजों को ट्रेनिंग देने की के लिए कुछ फौज वहां पर रख दी जाए। सवाल ये है कि अफगानिस्तान में उनकी फौजें तकरीबन एक दहाई से मौजूद है, इस एक दहाई में वो चाहते तो तरबियत क्या पूरी एक फौज खड़ी कर सकते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऐसी अफगान फौज तैयार नहीं की जो उनकी जगह ले सके। तो इसलिए ये कहना कि हम वहाँ अपने कुछ लोग इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि वो तरबियत देंगे, ये महज एक बात है, लेकिन ये सही है कि अब वहां ठहरना उनके लिए मुमकिन नहीं रह गया है, क्योंकि एक तो अमेरिकन आवाम का भी प्रेशर है और दूसरे मईशत के जो तकाजे हैं, अभी वो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर के लोगों को टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं उसकी वजह से वहां क्या हंगामे खड़े होंगे। तो इस कदर बुरी हाल में है मईशत कि उसका ये तकाजा है कि वो यहाँ से वहां से किसी तरीके से निकल ही लें, अपनी जान छोड़ा ही लें। तो फिर भी मैं एक बार फिर यह ऐसा करूं कि वो कोशिश ये करेंगे कि कोई ना कोई कंट्रोल वहां की जो भी उबूरी दौर की हुकूमत हो उसके ऊपर उनका रहे, और उसके लिए वो कुछ ट्रुप्स वहां 15-16 हज़ार ही रखें, लेकिन रखेंगे और बहुत वाइटल ट्रुप्स रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें बिलआखिर हक हार के वहां से निकलना ही पड़ेगा।
जी हसन कमाल साहब, अगला सवाल भी आपसे ही करना चाहूँगा कि बाराक ओबामा ने अपने पहले दौरे सदारत की हलफ बरदारी के बाद कुछ अरसे के बाद उन्होंने मिस्र का दौरा किया था, और आलम इस्लाम को उन्होंने एक पैगाम दिया था अमन का, सुलह का, भाईचारे का और मोहब्बत का। इस पैगाम के बाद बहुत से खुश फहम लोग ये कहने लगे कि शायद चूंकि इनका नाम भी बाराक हुसैन ओबामा है वगैरह वगैरह मुख्तलिफ तावीलात और तवजीहात की जा रही थी, हो सकता है कि अब अमरीका का रवैया आलम इस्लाम के इतनी कुछ नरम पड़ जाए। न सिर्फ ये कि नरम नहीं पड़ा, देखा ये जाए तो गुज़िश्ता 4 साल के अरसे में आलम इस्लाम में जितना कुछ तो खून अमेरिका के हाथों हुआ है उससे पहले अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बार तो उन्होंने इस तरह का कोई वादा भी नहीं किया आलम इस्लाम के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के ताल्लुक से, तो ये जो आइंदा उनका 4 साल गुजरेगा आलम इस्लाम के ताल्लुक से क्या पॉलिसी होगी, खास तौर पर मशरक़ वस्ता और फिलिस्तीन के ताल्लुक से?
देखिए वो इस वक्त भी गालिबन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अमेरिका का सदर सेनेट का गुलाम होता है और सेनेट पूरी तरीके से वहां की जो संयुक्त लॉबी है अमेरिकन इजराइल पब्लिक एक्शन कमेटी उसकी किस बुरी तरह से असीर है। सेनेट की जो रगेजा है वो पूरी तरीके से इस सन्नी लादी के उसमें है, तो अगर उन्होंने ये बात दरबिनाए खुरूस कही भी थी तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि सेनेट और वो सहयोगी लॉबी उन्हें उनकी इन बातों को पूरा नहीं होने देगी। शायद इस बार उन्होंने कोई वादा इस वास्ते भी नहीं किया कि वो किस बिना पर करते, जब वो ये देख चुके हैं कि गुआंटानामो बे जैसा मामला जो खालिस उनका अंदरूनी मामला था उसे भी वो उस वादे को भी पूरा नहीं कर सकते, तो आइंदा वो क्या पूरा करेंगे, कौन सा वादा पूरा करेंगे, और वादा पूरा नहीं करेंगे तो उनके वादे पे एतबार कौन करेगा। सवाल ये है कि अब मुस्लिम कंट्रीज से उनके क्या रिलेशंस होंगे, ये बहुत अहम बात है, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि उनके लिए तंगनाएं जो है वो बहुत सिकुड़ती चली जा रही, उनके लिए जो मैदान अमल है वो तंगतर होता चला जा रहा है।
जी
तो यकीनन चूंकि इस्लामी दुनिया में भी उनके पपेट्स मौजूद हैं और वो उनको मुतहरिक करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि अब हालात वैसे नहीं रहे हैं, खुद मशरिक़ वस्ता में और अरब दुनिया में भी एक सियासी बेदारी की लहर आ चुकी है और आ रही है, इसलिए मैं नहीं समझता कि रेशा दवानी के अलावा कोई वो बड़ा खेल खेल कर सकते हैं मुस्लिम दुनिया में। आप
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। कैसर इमाम साहब, आप देखें कि जिस वक्त बाराक ओबामा तकरीब हलफ बरदारी में मसरूफ थे उसी वक्त वाशिंगटन की सड़कों पर बहुत से ऐसे लोग थे जो मुजाहरा कर रहे थे और मांग कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि अब इसराइल की पैरवी, उसकी ताबेदारी, उसकी सियासत पर अमल दरामद तर्क किया जाए, इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इस बात पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे थे कि अमरीकी इंतजामिया इसराइल के इशारों पर काम करती है। तकरीब हलफ बरदारी के ही मौके पर वाशिंगटन में इस तरह के मुजाहरों से किस बात का अंदाज़ा होता है, क्या अब इसराइल के तई अमरीकी आवाम में भी नफरत का जज्बा बढ़ता जा रहा है और उसकी पॉलिसियों के सिलसिले में अमरीकी आवाम में कुछ शऊर और बेदारी पैदा होती जा रही है?
देखें, ये सारी दुनिया जानती है कि आज दुनिया में नस्ली इम्तियाज़ की जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो इसराइल है, और ये चीज़ जो है ये एक बीमारी की हद तक पहुंच चुकी है अब, और इसको अब ये महसूस किया जा रहा है दुनिया भर में कि ये चीज़ जो है ये इतनी अच्छी नहीं है इंसानियत के लिए और दुनिया के अमन के लिए, और ये बात अमरीकियों को अब महसूस हो चुकी है कि अगर अमरीका जंग में बुरी तरह मुलव्वस है दुनिया भर में तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इसराइल और इसराइल के इशारे हैं, इसराइल के मफादात हैं, और मैं समझता हूँ कि जब अमरीकी आम अमरीकियों को इस बात का एहसास हो चुका है कि इसराइल की वजह से उनके बजट पर कितना बोझ है, उनकी मईशत पर किस कदर बोझ है और उनकी आम जिंदगी किस तरह से मुतासर हो रही है, तो जाहिर है कि वो इस बात से नफरत करेंगे, इसराइल से नफरत जो है वो बढ़ेगी और ये बढ़ती जा रही है। आप जरा गौर करें कि गुज़श्ता 50 सालों में कोई एक दिन भी खाली ऐसा गया है जब इसराइल के मफाद की वजह से अमेरिका जो है उसने कोई ना कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिसकी वजह से अमरीकी मईशत पर, अमरीकी आम लोगों पर बोझ बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से नफरत का पैदा होना ये कुदरती अमल है, और ये कुदरती अमल जो है इसको अब रोका नहीं जा सकता, ये आगेगा जूं जूं इसराइल के तरह से इसराइल का दबाव अमरीकी गवर्नमेंट पर बढ़ेगा और अमरीकी गवर्नमेंट जिस तरह के इकदाम करेगी उनका असर अमरीकी अवाम की मईशत पर, उनकी जिंदगी पर पड़ेगा और अमरीका में लोग जो हैं वो इसराइल से नफरत करेंगे, नफरत कर रहे हैं और करते जाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। हमारे ज़्यादा बासी साहब, आप चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हैं और अमरीका की जंग पसंदाना पॉलिसियों की जद में जो जो ममालिक हैं उनमें इस वक्त पाकिस्तान भी है और आए दिन उसके ड्रोन तैयारों के हमले में बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं, अगरचे वो लोग दावा कुछ और करते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब जबकि दूसरा अहद सदारत तो शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि उनके वज़ीर ख़ारजा कैरी होंगे, जॉन कैरी, और ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि पाकिस्तान के तई कैरी का जो है वो रवैया नरम है और उनके नरम रवैया रखते हैं, नरम गोशा है उनके दिलो दिमाग में पाकिस्तान के तई, तो क्या कुछ समझा जाए कि पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं या पाकिस्तान के गिर्द जो गहरा तंग करने की कोशिश की जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ रविशों से, इसमें कुछ तब्दीली आएगी?
देखिए, आपने नरम रवैये की बात की, कैरी की मिसाल यही है कि वो कहते हैं ना, मैं किसी नरम इशारे का तमन्नाई हूँ और वो आके मुझे सुना जाते हैं तकरीर। वो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हल्के जो हैं उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कि बेवजह तो नहीं ये चमन की तबाहियाँ, कुछ बागबाँ हैं बरको शरर से मिले हुए। तो पाकिस्तान में हुकामे बाला में हुकूमत में कुछ बागबाँ ऐसे हैं जो बरको शरर से मिल के अपने मफादात को तहफ़ देते हैं और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर कुछ लोगों के इंटरेस्ट हैं। आप खौफ खाएंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जो अमेरिका के मफादात का डायरेक्ट उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, जब तक ये पपेट बैठे हुए हैं उस वक्त तक उसका लहजा नहीं बदलेगा। हाँ, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर कुछ इस वक्त मेरे ख्याल में साइलेंस टूट चुका है और ब्रेक द आइस वाली बात है। अब लोग खुल के अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका मजीद यहाँ पर होना रहना हमारे मफाद के लिए नहीं है। तो सेनेटर जॉन कैरी का जेस्चर आई डोंट थिंक के चेंज होगा, उनके पीछे वही अल्फाज होंगे कि जो उन्हें फीड करवाए जाएंगे। कंप्यूटर को जो कुछ फीड करे वही जवाब देता है। तो सेनेटर जॉन कैरी की मिसाल ऐसे कंप्यूटर की है कि जिसमें आप जो लिखेंगे वही 2+2=4 वाली बात होगी। तो सिर्फ जुबान उनकी होगी, वो उस वक्त तक जुम्बश नहीं देंगे जब तक पीछे से उन्हें प्लग इन नहीं किया जाता। तो प्लग इन उनका वाशिंगटन डीसी के अंदर है और वाशिंगटन डीसी का प्लग इन यरूशलम के अंदर है। तो ये प्लग इन का सारा चक्कर है, जब तक ये अपने प्लग इन को चेंज नहीं करते, सहूनियत के साय इनके ऊपर मंडलाए रहते हैं, उस वक्त तक न पाकिस्तान के हक में खैर खाई है न किसी और मुल्क के, चाहे वो सेनेटर जॉन कैरी हो या हैली क्लिंटन जैसे पहले आती थी। हालांकि वो खातून है, उनका जेस्चर तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनकी हार्ड फीलिंग थी और उनके लबो लहजे में तुंदो तेज बयानात होते थे, सख्ती होती थी, यही सख्ती सेनेटर जॉन कैरी जब विजिट करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि वो क्या नया हुक्मनामा लेके आते हैं। तो अमेरिका का पैगाम सबके लिए बड़ा वाजे है कि गुलाम बन के रहो और अगर जीना है, जिंदगी का हक सीखना है, तो फिर एक रोटी पे ही इक्तफा करो और इसी गुरबत की, बदहाली की और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहो। अगर उठ के बात करने की कोशिश की तो हम बारूद के जरिए हमारा अजदहा तुम्हें निगलने के लिए तैयार होगा। अब देखें इस अजदहा के अंदर कितना दमखम है, इजरायली बारूद की हद तक काम करता है, उस बारूद को हवा देने वाले कुछ हमारे अंदर बागबाँ मौजूद हैं। हम ये चाहेंगे कि वो पपेट्स वाले कार, वो बागबाँ, चाहे वो आले सऊद हो या पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर्स हों या हमारी पार्लियामेंट में बैठने वाले कुछ लोग हैं, जब तक ये हैं उसका मफादात को फ़रोग मिलता रहेगा। ये हवाएं, ये आंधियां, ये उस आग के अलाव को मजीद चिंगारी बनाने में मुआविन साबित रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बेदारी शऊर की तहरीक चल पड़ी है। आइंदा इलेक्शन में अगर 70% बैंक डिफॉल्टर्स और दूसरे लोग बाहर हो जाते हैं, कॉमन मैन आता है, कॉम्पिटेंट लोग आते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ का नक्शा भी बदलेगा और उसके असरात ईरान पर, अफगानिस्तान पर और खित्ते पर बड़े मुस्बत जो है वो पैदा होंगे और इंशाल्लाह खुशहाली और उम्मीद की किरण जो है वो नुमाया होगी।
बहुत शुक्रिया, वक्त रात में फिर हाजिर होंगे, अगरचे वक्त हमारे पास कम बचा है, मेरा स्टूडियो मौजूद रहेगा। हसन कमाल साहब, बाराक ओबामा ने अपनी तकरीर में इस बात का खुलकर एतराफ़ किया है कि हमारी कौम में ये तस्वूर घर कर चुका है, उनको ये यकीन हो चुका है कि अब आलमी सतह पर अमरीका की साख तबाह हुआ ही चाहती है और इस तस्वूर को और इस यकीन को उनके जहनों से निकालना मुश्किल है। एक तरफ ये इतराफ और दूसरी तरफ आलमी क़यादत का दावा, ये दो मुतजाद चीज़ें एक ही तकरीर में और एक ही लबो लहजे में कैसे मुमकिन हो सकती?
वो एक तरफ तो अमेरिका की फौजी ताकत जिससे दायरे की इनकार नहीं किया जा सकता है, उस वक्त जब तक भी ताकत है वो, तो गालिबन ये जोन कि वो अमेरिका जो है वो अब भी क्यादत की हैसियत रखता है, उसकी वजह ही उनकी फौजी ताकत हो। दूसरी तरफ जैसे मैंने बार बार इससे पहले भी अर्ज किया, जो मवेशी हकीकत हुई, जो जमीनी हकायक है, मेरा ख्याल है कि उन्हें उन्होंने ये बात जो कही है वो गलत नहीं कही है कि अमरीकियों के दिमागों में ये बात घिर कर चुकी है कि ये आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब से 20-30 साल पहले का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, ये वो अमेरिका नहीं है जो सर्द जंग के बाद जब खुद भी ताकत बनकर उभरा था, फौजी एक बार से रहा हो लेकिन मुदब्बराना तौर पर, ताजिराना तौर पर, माशी एतबार से, अखलाकी एतबार से आज वो किसी भी तरीके से क्यादत का हकदार तो क्या, क्यादत का उम्मीदवार भी नहीं हो सकता। तो ये बात अमरीकियों को मालूम हो गई है, और आपने ने इशारा किया था और बिल्कुल सही किया था कि अब इस अमरीकी आवाम को ये मालूम हो रहा है रफ्ता रफ्ता, और एक हल्के से तो मालूम हो भी चुका है कि इन तमाम बातों की बुनियादी जड़ इसराइल की अंधी दोस्ती, इसराइल की गैर मशरूत हिमायत और इसराइल के नाम पर प्रॉक्सी वार करने की जो कोशिशें अमेरिका ने की हैं, ये सारी लानतें उसी का नतीजा।
जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कैसर इमाम साहब, आप देखें कि पिछले 1-1.5 साल से आमतौर से ये कहा जा रहा था कि बाराक ओबामा और नेतन्याहू में नहीं बनती, हालांकि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बहुत ही सादा लव हैं और बहुत ही सादगी से वो सोचते हैं। अब आज ही की बात है, आज इसराइल के अंदर पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं और जो ख़ुद इसराइल के अंदर जो अवामी जायजे उसके मुताबिक एक बार फिर नेतन्याहू वजारत उज़्मा की कुर्सी संभाल लेंगे, तो अब इधर ओबामा और उधर नेतन्याहू, तो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के आपस में नहीं बनती, और नेतन्याहू ने मिट रोमनी की खुलकर हिमायत की थी इंतखाबी मुहिम में अमरीका के, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 4 साल चलेगा नेतन्याहू और ओबामा में क्या तलवार खींची रहेगी या अंदर से जो है वो कुछ और दूसरी कहानी होगी?
देखें, इससे पहले ये बात अगरचे कही तो गई है कि इन दोनों में कभी नहीं बनती, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके शवाहद क्या हैं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि इन दोनों में ना बनने की कोई सामने कोई बात आई है? मेरा ख्याल है आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई। जो कुछ भी कभी इसराइली वजीर आजम ने कहा है उसको पूरी तरह से महसूस किया गया है अमरीका में, अमरीकी हुकूमत में, और अमरीकी हुकूमत ने उस पर अमल भी किया है। ये ठीक है कि बाज़ औक़ात हाथी के दांत होते हैं, वो दिखाने के लिए ज़रा मुख्तलिफ भी होते हैं और ये दुनिया को सिर्फ कोई मैसेज देने के लिए होते हैं, लेकिन अंदरून खाना इन दोनों की मिली भगत जो है वो तो जारी है और जारी रहेगी, इसमें तो किसी को कोई शुबा हो ही नहीं सकता। और फिर जो नए वजीर खारजा आने वाले हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी अगर इनके दरमियान किसी किस्म की कोई मामूली सी रंजिश है भी तो उसको दूर करने में वो बड़े मुआवन साबित होंगे, इसलिए कि उनका माजी जो है वो भी इसी किस्म का है। सो मेरे ख्याल में ये बातें जो हैं ये महज कहने की हैं कि इनमें नहीं बनती, इनमें गाड़ी छिनती है और छिनती रहेगी।
बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। उमर रियाज अब्बासी साहब, हमारे पास 2 मिनट का वक्त बचा है, मैं उनकी पूरी तकरीर पर अगर एक मुख्तसर सा तबसरा आपसे करने को कहूँ और गुजारिश करें तो क्या कहेंगे कि जो उन्होंने इतने सारे वादे किए हैं कितने पुरुम्मीद हैं आप?
वो वादा ही किया जो वफा न हो, असल में बात वादों की नहीं है। जितनी भी बातें उन्होंने की है मेरे ख्याल में एक लॉलीपॉप है, डोमेस्टिक अफेयर्स के हवाले से अमेरिकन आवाम के लिए भी उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। आपको याद है कि BBC और CNN जैसे इदारे सहूनी लॉबी के नेटवर्क में आ चुके हैं और शुरू से हैं, लेकिन अब जैसे ईरानियन मीडिया स्ट्रेंथन हो रहा है और आपका नेटवर्क अरेबिक में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, उर्दू में, जिस तरह आपने अवेयरनेस दी है, पाकिस्तानी मीडिया भी खुल के अमेरिका के खिलाफ आ चुका है और ये फर्स्ट टाइम है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बेदारी शऊर को बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहा है और एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान के हर शख्स के रगों पे में सिरायत कर चुका है। तो ये मीडिया वॉर थी, मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ, मीडिया प्रोपेगेशन पर अमेरिका ने बहुत पैसा लगाया है, तो अब मीडिया पर अमेरिका शायद बैकफुट पर चला जाए और जितनी भी तकरीर है बराक हुसैन ओबामा की, मेरे ख्याल में वो एक ही रोह में बहने वाली है, उसमें से एक लफ्ज़ भी पूरा नहीं होने वाला, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहने वाला हूँ। वो मजीद तबाही की तरफ दुनिया को धकेलेंगे और दुनिया तबाह होने से पहले अमेरिका की तबाही हो चुकी होगी, दुनिया वहीं खड़ी होगी और दुनिया देखेगी कि अमेरिका किस तरह सिंक करता है, चाहे वो बहरुल कायल के अंदर हो या बहरे ओकेनोस के अंदर। तो ना उनका डोमेस्टिक अफेयर्स ठीक हो सकते हैं, उनका घर अपने डिसऑर्डर हुआ हुआ है, तो अपने घर की तरफ ही तवज्जो दे लें तो बड़ी बात है, बाहर तो बड़ी दूर की बात है। तो जो लोग अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं देते, बाहर दूसरों के काम में मुदाखलत करते हैं, तो घर जिनका आंगन वीरान हो जाए फिर वो बाहर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, तो उनकी पूरी तकरीर का लुबे-लुबाब मैं कम से कम यही समझ पाया हूं।
बहुत शुक्रिया आपका, हम अपने तीनों मौजूद मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और सबका बिलइत्तेफाक यही कहना था कि ये जो सारे वादे थे ये एक लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, और अमरीकी सदर जो अपने गुज़िश्ता 4 साल में कुछ न कर सके, आइंदा 4 साल में भी जो इतने बड़े बड़े वादे किए हैं वो भी पूरा नहीं कर सकेंगे, और उनका ये कहना कि वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाएंगे ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज है, और उनका ये कहना कि हमारे यहाँ इंतहाई शदीद माशी मसाइल पाए जाते हैं लेकिन हम आलमी क़्यादत के लिए तैयार हैं, ये उससे भी बड़ा एक मजाक और मज़ाक़ा है। जो अपने ही घर में इंतहाई कसम पुरसी के आलम में हो, वो दूसरों की क़्यादत, रहबरी और सरपरस्ती का दावा कैसे कर सकता है। आज अमरीकी आवाम इंतहाई माशी मुश्किल से दो चार हैं। अमरीकी सदर बाराक ओबामा को चाहिए कि पहले वो अपने घर को ठीक करें, फिर बाहर को ठीक करने का दावा करें, और बाहर को अगर उन्हें ठीक करना है तो सबसे बड़ा काम उनका यही होना चाहिए कि वो उन मुल्कों से अपनी फौजें वापस बुला लें जहाँ वो कुछ तो खून का बाजार गर्म किए हुए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।